ओम शांति। तपस्वी कुमार बाल ब्रह्मचारी राजयोगी ब्रह्मा कुमार ललित भाई जी का डबल लाइट योग तपस्या साधना भट्टी में बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। आप 1993 में 1993 से आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, 97 से आप सरेंडर है बाबा की सेवा में, और 2007 से आप पूर्ण रूप से मधुबन हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप सेक्रेटरी हैं। आप हेडक्वार्टर आबू में अकाउंट्स, फाइनेंस और लीगल अपेंस की जिम्मेवारी संभालते हैं। खुशराजी सीनियर सिटीजन होम जो अहमदाबाद में है उसके आप फाउंडर हैं। साबरमती रेडियो के भी आप प्रोमोटर हैं। दिव्य नगरी स्लम सेवा योजना पूरे इंडिया में जहां भी स्लम सेवा चलती है प्रोजेक्ट उसके भी आप चीफ प्रोमोटर हैं। फाइनेंस फ्रेटर्निटी सेवा विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। दिव्यांग जन सेवा विंग के भी आप वाइस चेयरपर्सन हैं। आपने नेचुरोपैथी में भी एक्सपर्टाइजेशन हासिल किया है और आप गीतों की भी रचना करते हैं और उसके लिरिक्स भी बनाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये आपकी हॉबी है, भोग के जो नए गीत बने हैं और बहुत सारे गीत बने, आओ मिलकर भोग लगाएं, वतन में सभी मिलकर जाएं भोग लगाएं, सुना होगा आप लोगों ने, तो ये भी आपकी ही रचना है। और आप विशेष करके बहुत एक कुशल वक्ता भी हैं और इसके साथ हजारों लेक्चर्स आपने राजयोगा मेडिटेशन के ऊपर जगह जगह पे दिया होगा। आपका मनन चिंतन भी बहुत अच्छा है, आप योग के भी बहुत अच्छे अभ्यासी हैं। ज्ञान, योग, संगीत, कला, स्वास्थ्य, इन सबों का एक समन्वय बनाकर आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाए हैं। और जब बात हो रही थी दीदी से कि कौन सा टॉपिक देवे आपको, तो भाई साहब ने कहा कुछ भी दे दीजिए आप मुझे, मैं किसी भी टॉपिक पे क्लास करा लूंगा। तो किन शब्दों में स्वागत करूं मैं, तो बस धन्यवाद करूं बाबा, लाख लाख शुक्रिया तेरा, भेजा हमारे पास ऐसा हीरा, भेजा हमारे पास ऐसा हीरा। तो आज का जो विषय है, मनसा द्वारा सकाश कैसे दे, क्योंकि वर्तमान समय की यही आवश्यकता है, इस पर ही हमें मार्गदर्शन देंगे आदरणीय भाई जी। शांति,
ओम शांति। आप सभी बाबा के इस मीठे मधुबन घर में तपस्या भट्टी के लिए आए हैं, क्लासेस आप सुन रहे हैं, लेकिन आज ये अपना क्लास नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दो होता है ना कॉलेज में, तो आज अपना प्रैक्टिकल होगा। तो टॉपिक आपने सुना कि मनसा द्वारा सकाश कैसे दें। मैं आपको कुछ अलग अलग अवस्थाओं में ले जाऊंगा, अलग अलग स्थितियों में ले जाऊंगा, आपको अपने मन का चेकिंग करना है उस समय कि उस समय मन की क्या स्थिति रही है, और उसको मन की डायरी में ही नोट करना है। तो पहले हम शांति से योग में बैठेंगे कुछ देर के लिए, कोई गीत नहीं बजेगा, कोई लाल लाइट नहीं होगी, हम बस ऐसे ही हम योग में बैठे हैं। आप अपने मन की अवस्था का, क्योंकि मनसा द्वारा है ना, मनसा द्वारा सकाश, तो वो अवस्था का चेकिंग करते करते जाना है। तो हम सभी योग में बैठ रहे हैं। अभी हम लाल लाइट करके हल्का म्यूजिक शुरू करेंगे, कमेंट्री के द्वारा योग करेंगे। संगम युग के इस पुरुषोत्तम युग में मैं अवतरित आत्मा हूं, स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ने मुझे विश्व कल्याणकारी बनाया है। इस देह में भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा में शांति, प्रेम, आनंद, खुशी और शक्ति भर रही है। मैं आत्मा एक दिव्य दर्पण बन गई हूं। बाबा की किरणें इस दिव्य दर्पण पर आ रही है और यहां से विश्व की अन्य आत्माओं को मिल रही है। मेरे संपर्क में आने वाले हर आत्मा परमात्मा प्यार का अनुभव कर रही है। खुशी का अनुभव कर रही है, शक्ति का अनुभव कर रही है। आपने 10:30 बजे जो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, तब भी आप बैठे थे और आपके मन की अवस्था थी। फिर हमने सफेद लाइट में शांति से बैठे, तब हमारे मन की अवस्था क्या थी? और जब हम कमेंट्री से योग कर रहे थे, तब हमारे मन की अवस्था क्या थी? क्या तीनों ही समय एक जैसी थी या थोड़ा थोड़ा परिवर्तन था? परिवर्तन था। एक रेडियो स्टेशन है, आपने रेडियो तो सुना ही होगा। रेडियो स्टेशन में कोई गीत बजता है या कोई किसी की बातचीत चल रही होती है, वो प्रसारण होता है, तो अच्छा लगता है या मिक्स चल रहा होता है, एक लाइन कुछ चल गई, एक लाइन कुछ चल गई, एक कुछ आ गया, एक कुछ आ गया, वो अच्छा लगता है। क्या लगता है? कोई एक जैसा चल रहा होता है तो अच्छा लगता है सब। अब हम अगर वो स्थूल रेडियो की बात है, वहां से भी उस रेडियो स्टेशन से क्या निकलता है जो लोगों को सुनाई देता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाद भी क्या निकलता है? तरंगे निकलती है, वेव्स निकलती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो जिससे लोगों को 100 200 किलोमीटर दूर भी सुनाई देता है। ऐसे ही आत्मा, मन, आत्मा की ही शक्ति है। मन विचार करता है, जब मन विचार करता है तो क्या निकलता है? वाइब्रेशंस निकलते हैं। कहते हैं ना, बाबा ने कई मूल्यों में हमें सुनाया, वाइब्रेशन निकलते हैं। वो तरंगे, रेडियो से निकलने वाली तरंगे भी हमें सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती है, इन आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो रेडियो होता है उसमें एक डिकोडर लगा हुआ होता है। जैसे ही वो तरंग उस डिकोडर पर जाती है तो वो आवाज में बदल जाती है और वो हम सुन सकते हैं स्थूल में। ऐसे ही मन में जो विचार चलते हैं, वो विचार जिन तरंगों के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में निकलते हैं, तो इन आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरी आत्मा को टच करते हैं, उस आत्मा की जितनी पावरफुल मशीन है, डिकोडर मशीन, वो उनसे फील करती है, किसकी? शांति की, प्रेम की, खुशी की, भय की, नफरत की, घृणा की, जलसी की, शक्ति की, सुख की, वो फीलिंग आती है उसको। जैसे ही वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचता है तो आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, आप खुश हो जाते हो। उसको देख, उसने कुछ बोला नहीं है, केवल उसका चेहरा देखा हमने और मन में खुशी छा जाती है। और दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो मन उदास हो जाता है, भय में आ जाता है, उसने भले कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वो वाइब्रेशन ही आत्मा को वो टचिंग करा रहे होते हैं। तो अभी हमको मनसा से शकास देना है। तो हमारा दूसरा, आपने देखा होगा कि रेडियो स्टेशन का टावर जितना नीचा होता है उतना उसका स्कोप, फैलाव जो है वो कम होता है, और टावर जितना ऊंचा होता है उतना वो ज्यादा एरिया को कवर करता है। जैसे अपना रेडियो मधुबन है यहां, वो रेडियो मधुबन ऐसे तो शांतिवन में उसका स्टेशन होना चाहिए, तो अगर शांतिवन में वो स्टेशन लगाता तो 30-40 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक ही वो जाता। लेकिन हमारे यशवंत भाई जी ने उसका स्टेशन कहां लगाया? अचलगढ़, जो इस अरावली पर्वत की बहुत ऊंची चोटी है, वहां लगाया। तो क्या होता है, 200 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक वो सुनाई देता है, क्योंकि ऊंचा है तो ज्यादा तक कवर हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हमें मनसा से सकास देना है तो हमें आत्मा को ऊंची स्थिति में रखना पड़ेगा। हम इस शरीर में रख के देंगे तब भी सकास तो दे सकते हैं, लेकिन वो कम लोगों तक जाएगा। अगर हम सूक्ष्म वतन में जाके सकास देते हैं तो बहुत लोगों तक जाएगा, पूरा समझो पृथ्वी लोक तक जाएगा। लेकिन अगर हम परमधाम में बैठकर सकास देते हैं, बीज रूप अवस्था में स्थित होकर सकास देते हैं, तो क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड को वो सकास मिलेगा। एक बार रतन मोहिनी दादी जी से हमने पूछा था कि दादी जी, कोई व्यक्ति बीमार है, उसको हमें सकास देनी है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, उसका एग्जाम है, उसको हमें सकास देनी है। किसी व्यक्ति का बिजनेस में लॉस हो गया है, उसको हमें सकास देनी है। किसी व्यक्ति की घर में झगड़ा चल रहा है, उसको हमें सकास। ऐसे हमारे संपर्क में कई व्यक्ति आते हैं, हर एक की अलग अलग परिस्थिति है, हमको उनको सकास देनी है। तो हम कैसे योग में बैठे तब एक एक को सकास देवे, क्या करें, ऐसा दादी जी ने प्रश्न पूछा था, दादी जी को हमने पूछा था। तो दादी जी मुस्कुराए, दादी जी कहा कि ठीक है, योग में बैठते हैं और ऐसे एक एक को सकास देनी है तो भी बाबा को याद करके दे सकते हैं, पर जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं, जिनकी अवस्था बहुत ऊंची होती है, वो ऐसे एक एक को सकास नहीं देते हैं। वो बाबा के पास, बाबा की याद में परमधाम में स्थित हो जाते हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, और वहां बाबा से शक्ति लेके, जैसे बाबा से तो शक्ति मिल ही रही है, वो रिसीव कर रही है आत्मा, वो बाबा से शक्ति रिसीव करके बस खुला रहता है तो सबको सकास मिलती है। तो जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाता है, बीमार व्यक्ति को वो ताकत मिल जाती है, एग्जाम वाले को वो एकाग्रता मिल जाती है, झगड़े वालों को वो समाने की शक्ति मिल जाती है, लॉस जिसका हुआ है उसकी बुद्धि खुल जाती है, नया आइडियाज मिल जाता है। तो ये केवल हमें बाबा की गहरी याद में रहना है तो आत्मा से निकलने वाली वो किरणें, वो वाइब्रेशंस, वो हरेक को पहुंच जाएगा और जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसे भी कई हैं जिनको हम डायरेक्ट याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमें याद कर रहे होते हैं, तो उनको भी सकास मिल जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये एक बहुत बहुत पावरफुल अवस्था है कि जिसने हम पूरे विश्व को जो चाहिए वो सकास में दे सकते हैं। अब उसका स्थूल एग्जाम्पल देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आ रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है जो हमें ठंडक दे रहा है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये लाइट चल रही है जो हमें रोशनी दे रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से बाथरूम में गीजर चल रहा है जो हमें गर्म पानी दे रहा है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से रोटी की मशीन चल रही है जो रोटियां बना के दे रही है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उपयोग कितने हैं अलग अलग। तो ऐसे ही जब हम योग में बाबा के पास होते हैं तो हमारे आत्मा से निकलने वाले वाइब्रेशंस वो सबको अलग अलग प्राप्तियां कराती है। अब हमने एक एक को याद किया तो क्या होगा, वो बाबा की पावरफुल याद नहीं रहेगी, फिर वो आत्माएं याद आएगी। आप बैठो, आप सकास दे रहे हो किसी को याद करके, तो कौन आ रही है याद? बाबा भी याद आ रहा है, लेकिन साथ साथ में वो देहधारी भी याद आ रहे हैं, और वो देहधारी याद आते आते कभी हमें ही नीचे ले आएंगे। जो हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उससे क्या होगा, हम खुद नीचे आ जाएंगे उनको याद करते हुए। तो देहधारियों, अच्छा सपोज याद आ जाता है, चलो हम बाबा की याद में ही गहरे बैठे और याद आ जाता है कोई भी देहधारी का चेहरा, तो एक ही पावरफुल, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो खुश रहे, वो आनंद में रहे, कल्याण में सब आ ही जाता है, उसका कल्याण। बस यही केवल, और स्पेशली उसके लिए कोई थॉट नहीं हो, लेकिन उसका भला उसका कल्याण, तुरंत बाबा की याद में चले जाए। तो कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान घटना कुछ भी याद आवे योग में बैठते समय, आते हैं आ जाते हैं, क्योंकि इस शरीर में है, समाज में रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, सबके बीच है, संगठन में है, बातें हो रही है, 24 घंटा है, सुबह से शाम तक कई परिस्थितियां आ रही है, तो याद आना स्वाभाविक है, और विशेषकर योग में बैठेंगे तभी याद आएगा वो सब चीजें भी। तो भले याद आवे, न घबराना है, न हताश होना है कि अरे मैं योग में बैठता हूं और यही याद आ जाते हैं, यही कोई बात है, आने दो। कि हमको क्या करना है, गुड विशेष, शुभ भावना की सकाश, उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम में न जाए तो अच्छा है, कि वो क्या प्रॉब्लम में है उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है। हम तो बस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर ले, वे उसको जो इंस्ट्रूमेंट चलाना होगा वो चला लेगा, हम तो योग की करंट उनको भेज देवे। हो सकता है कि हम उनको केवल लाइट के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसको तो गर्म पानी भी चाहिए, उसको तो ठंडक भी चाहिए, और भी कुछ चाहिए, तो अच्छा है ना हमें सीधा इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही दे देवे, फिर उसको जो यूज करना है करे। तो एक तो ऊंची अवस्था जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और दूसरा कोई विशेष थॉट नहीं, जनरल पावर, पावरफुल करंट जिससे उसको जो चाहिए वो ले ले। अब किसी को लेना ही नहीं होगा, बंद ही करके रखा होगा अपना रिसीवर, तो भी हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको देते जाना। जैसे बाप समान बनना है तो क्या है, बाबा दे रहा है निरंतर, ऐसे हमको शुभ भावना के वाइब्रेशन, शुभ भावना की सकास देते जाना है, जिसको जिस प्रकार से लेना होगा वो लेते जाएंगे। लेकिन सारा खेल मन का है, विचारो है, मनसा द्वारा सकास, तो मन का खेल है, करना किसको है, ये मन को करना है। अब मन में ऐसे देखो तो कई विचार उत्पन्न हो जाते हैं बैठे बैठे, काम के, नई काम के, पॉजिटिव नेगेटिव व्यर्थ, कई प्रकार के विचार चलते ही रहते हैं। कोई बहुत हम उनको कंट्रोल कर पाए ऐसा होता नहीं है, चलता रहता है, और उससे हम फिर संकल्प, विचार से एक थोड़ी पावरफुल स्थिति है संकल्प की, कि जब हम कोई विचार को शक्ति देकर पावरफुल रीति से करते हैं तो वो संकल्प होता है। तो वो संकल्प में हम कैसे कन्वर्ट करें, जैसे ये विचार जो है ना, ये हमारा रॉ मटेरियल है, और इससे फिर फिनिश्ड गुड्स बनता है जो संकल्पों के रूप में जाता है। तो अब संकल्प कब अच्छे होंगे, कब पावरफुल होंगे, कब पॉजिटिव होंगे, हमारा फिनिश गुड्स कब अच्छा होगा, प्योर कब होगा, जब रॉ मटेरियल हम प्योर डालेंगे, उसमें मिक्स नहीं करेंगे, तब फिनिश्ड गुड्स भी अच्छा होगा, माल फैक्ट्री में अच्छा निकलेगा। अगर आप सब्जी बनाते हैं, अगर जो आप सब्जियां मार्केट से लाए वो ही गली हुई होंगी, कड़वी होंगी, तो जो सब्जी बनके तैयार होगी वो कैसी होगी, कड़वी कड़वी ककड़ी की आप सब्जी बनाएंगे तो क्या होगी, कड़वी तुरई की सब्जी बनाएंगे तो सब्जी कैसी लगेगी, कड़वी लगेगी, क्योंकि जैसा रॉ मटेरियल था वैसा फिनिश्ड गुड्स बना। तो हमारे भी, क्योंकि ये मनसा है, तो हमारे भी मन में अगर प्योर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, कल्याणकारी थॉट्स आएंगे, तो जो संकल्प हम देंगे, जो शुभ भावनाएं हम देना चाहेंगे, वो भी उस प्रकार की बनेगी। तो रॉ मटेरियल को प्योर कैसे करें, मनसा सेवा में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है वो है रॉ मटेरियल को प्योर करना। तभी मनसा सेवा हो सकती है। तो रो मटेरियल को प्योर कैसे करें? अब ये तो आ रहा है, हमने किसी को देखा, विचार आ गया, हमने कोई चीज सुनी, विचार आ गया, हमने कोई चीज टच की, विचार आ गया, कोई चीज सुंगी, विचार आया। तो रॉ मटेरियल को प्योर करने के लिए जो ये हमारी इंद्रियां है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जो अंदर सूचना जा रही है उसको प्योर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें मनसा सेवा के लिए समझनी है। बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक होती जाएगी। जहां सबसे ज्यादा मेहनत हमें करनी है वो ये है कि इन पांच इंद्रियों के द्वारा जो इनपुट अंदर जा रहा है उसको प्योरीफाई करने का। अब आपके हाथ में मोबाइल है, अब उस मोबाइल में आपने जो एक मिनट का, आधा मिनट का, 20 सेकंड का वीडियो देखा, अब जो वीडियो देखा है आंखों से और जो कानों से आवाज सुनी उसकी, वो विचार तो उत्पन्न करेगा। जो भी देखा हमने, सुना, विचार उत्पन्न करेगा। अब चूंकि हम ज्ञानी हैं तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद कोई नेगेटिव विचार आ रहा होगा तो भी हम मेहनत करेंगे, नहीं नहीं इसको तो ऐसा है, इसका मतलब तो ऐसा है, या मैं आगे से नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इस प्रकार के फिर हम विचार करेंगे। लेकिन एक बार देखा तो कहीं न कहीं अंदर थोड़ा उसका छाप तो रहेगा, वो फिर कहीं न कहीं याद आएगा, और विशेष योग में बैठेंगे तब वो याद आएगा सब चीजें। तो बाबा ने हमें जो खास मेहनत कराई है, अव्यक्त वाणियों में जो खास बताया है, वो है कि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही अंदर भेजे। अब वो भेजने की प्रोसेस ऑटोमेटिक है। अब आप फोटो देख रहे हो कोई नेगेटिव चीज का और आप चाहो कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अंदर जाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल हमको अंदर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको जो फोटो देखना है वो ही पॉजिटिव देखना है। बाबा ने याद है बाबा ने मूल्यों में क्या कहा था, कौन सा फोटो पर्स में रखो, जेब में रखो? लक्ष्मी ने क्यों कहा था बाबा ने? ताकि वो देखें तो पॉजिटिव चीजें ही अंदर जाए। क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या क्या इनका श्रृंगार है, वो रूहानियत का श्रृंगार मुझे अभी करना है। बाबा ने सिनेमा को सिन की मां कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो चीजें अंदर जाती है तो विचार उत्पन्न करती है, वो रॉ मटेरियल वो ही जाता है अंदर। तो मेहनत करनी है कि इन पांच इंद्रियों से मनसा में बनती है जो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनको प्योरीफाई करना है। और जैसे ही ये प्योरीफाई, इसमें टाइम लगता है क्योंकि पुराने संस्कार भी हैं, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन प्योरीफाई देना शुरू करेंगे तो जो आउटपुट निकलेगा, हमारे मन के जो संकल्प बनेंगे और संकल्पों के बाद जो हमारे शब्द बनेंगे और शब्दों के बाद जो हम व्यवहार में आएंगे, कर्म में आएंगे, वो सब भी क्या होगा, पॉजिटिव और कल्याणकारी होता जाएगा। बाकी नेगेटिव गया तो नेगेटिव आएगा। कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर हमने फीडिंग ही गलत किया, कचरा डाला, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, कचरा ही आएगा। तो जो अभी हमें मेहनत करनी है वो हमें अपने आप पर करनी है कि इन इंद्रियों के द्वारा हम कैसे प्योर इन्फॉर्मेशन अंदर भेजें। जब प्योर इन्फॉर्मेशन अंदर गई तो फिर जो हम मुरली पढ़ते हैं डेली, बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा के साथ हम जो योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली से पहले करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का करते हैं, नुमा श्याम का करते हैं, तो उस ज्ञान योग के द्वारा वो प्योर इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव गुड्स में बदल जाएगी, हमारे पॉजिटिव संकल्प में बदल जाएगी, पॉजिटिव शब्दों में बदल जाएगी। फिर जो पुराने संस्कार है वो धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे और ये पॉजिटिव संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, ये बनना शुरू हो जाएगा। मतलब ये पूरा जैसे ये बाहर कारखाने होते हैं ना, ये अंदर का पूरा कारखाना है जहां ये सब प्रोसेस चलती रहती है। अब हमको इसको समझना है, हम रूहानी साइंटिस्ट हैं, वो जिस्मानी साइंटिस्ट हैं, हम कौन हैं, रूहानी साइंटिस्ट। इसमें वो नहीं कि इसमें पढ़ा हुआ कि कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बाबा की इस यूनिवर्सिटी में आए तो हमको सब डिग्रियां मिल गई, इस यूनिवर्सिटी में बाबा ने हाईएस्ट डिग्री दे दी हमें, बस हमको ये मन का वैज्ञानिक बन जाना है, ये रूहानी वैज्ञानिक बन जाना है कि ये कैसे सब हो रहा है अंदर प्रोसेस। बाकी की बात चीजें बाबा कर रहा है, ज्ञान भी उसने सुना दिया, सेंटर बना दिया जहां हम रोज जाएं, मुरली सुने, योग करें, ब्रह्मा भोजन खाएं, ये सब व्यवस्था बाबा ने खड़ी कर दी। रोज मुरली, रोज, आप सोचो नई नई बातें वो सब कर दी, लेकिन जो ये इनपुट वाली बात है ना ये हमारे पर ही छोड़ दिए और उसमें कृपा नहीं करता है बाबा। लेकिन कृपा का अर्थ बताता है कर्पा, कर्पा का क्या अर्थ है, कर और पा, जो इनपुट हमने भेजा है वही हमको रिजल्ट मिलेगा, कर्पा। तो मनसा के लिए ये गेट, पांचों इंद्रियों के गेट, अभी देखो आंख तो चलो कोई ऐसा सीन है तो हम बंद भी कर देंगे क्योंकि इसको दरवाजे दिए हैं, वो दरवाजे हम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो बिना दरवाजे के है, कान तो हाथी को चींटी कैसे बेहोश कर देती है, कान से, नाक से, ये बिना दरवाजे के है। अच्छे ज्ञान में चल रहे होंगे, बहुत अच्छे, एकदम निश्चय बुद्धि, एक कोई डाउटफुल बात किसी ने बता दी, मन में चक्कर चालू हो जाएगा उस डाउटफुल बात का, रूठ जाएंगे, क्लास में आना छोड़ देंगे, ज्ञान छोड़ देंगे, सेंटर चेंज कर देंगे, क्या क्या कर देंगे एक डाउटफुल बात। ये इसका प्रभाव है। तो यहां हमको अपना धर्मराज बनना है। अगर हमको मनसा पावरफुल बनानी है, मनसा द्वारा सकास देना है, तो हमें अपना धर्मराज बनना है। हम अपना वकील बनेंगे तो हम परिवर्तन नहीं हो सकेंगे। वकील क्या करते हैं, वकील अपना क्लाइंट, वो गलत है या सही है, उसको जिताने का प्रयास करते हैं। अभी सपोज किसी ने आकर आपको कोई गलत बात सुनाई, व्यर्थ नेगेटिव बात सुनाई, आप क्योंकि ज्ञानी है तो एक तरफ मन विचार कर रहा होगा, नहीं नहीं हमको ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, बाबा ने मना किया हुआ है, हमको व्यर्थ नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बाजू मन कहेगा कि क्या करें, कोई सुना रहा है तो वो तो खाली हो जाए कम से कम, इसलिए सुन लेते हैं, चलो सुनेंगे तो एटलीस्ट ये तो हल्का हो जाएगा। वो वकील बन गया मन हमारा, वो बातें सुननी है उसकी वकीलात करने लग गया मन। चलो हम बड़े हैं तो इनकी बात सुन लेते हैं, हम ज्ञान में ये नया आया है ये पुराना है तो हम इनकी बात सुन लेते हैं। मन के पास कई आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे फिर कि हाँ ये बात हमको सुननी चाहिए। अच्छा सुन ली, फिर क्या हुआ? इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल कौन सा गया अंदर? व्यर्थ और नेगेटिव का। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? व्यर्थ और नेगेटिव मिलेगा। सीधा सीधा हिसाब है कर और पा, और कुछ नहीं है यहां गणित, ये सीधा गणित है, 2+2=4 है। तो यहां हमको अपना धर्मराज बनना है। नहीं मतलब नहीं, अगर अपने आप, अगर आपको मनसा सेवा करनी है वास्तव में तो अपना धर्मराज बनना ही पड़ेगा इन पांचों इंद्रियों के प्रति, पांचों इंद्रियों के प्रति धर्मराज बनना पड़ेगा। हो सकता है कि उससे सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा दुख हो, टेम्परेरी, लेकिन वो भले टेम्परेरी। अगर हम बुखार आया और इंजेक्शन लगा रहे हैं तो डॉक्टर खराब है कि अच्छा है? इंजेक्शन लगा रहा है तो डॉक्टर खराब है कि अच्छा है? क्यों दर्द दे रहा है? तो किसके लिए दे रहा है दर्द? हमको ठीक होने के लिए ही दे रहा है ना दर्द, तो डॉक्टर अच्छा है, दर्द दे रहा है तो भी अच्छा है। तो अगर हमने अपने इन इनपुट्स को पॉजिटिव करने के लिए धर्मराज बन के किसी को रोका, मना किया किसी चीज के लिए, उसको टेम्परेरी दुख हो तो चिंता नहीं करने का, वो टेम्परेरी है, लेकिन उससे आप भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा, दोनों बच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमारे मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और मन सबसे ज्यादा जो है डिस्टर्ब होगा, मनसा सेवा सबसे कम हो जाएगी अगर हम परमत, परचिंतन और परदर्शन में रहेंगे। तो यहां अपना धर्मराज बनना है। मैं मेरे जीवन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनाता हूं आपको ताकि आपको आइडिया रहे। मैं सेंटर से मधुबन रहने आया था, पहले 10 साल तक आता था, 1-2 महीना 15 दिन सेवा करके जाता था। जब परमानेंट रहने आया तो एक भाई जो मुझे जानता था, समर्पित भाई, वो मुझे आके कुछ इधर उधर की बातें सुना देता था, वो जो व्यर्थ थी। मैंने सोचा ये व्यर्थ को तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे व्यर्थ से बिल्कुल ही मैं अलग रहता हूं, मुझे व्यर्थ में जाना ही नहीं है। कोई कुछ भी कहता हो मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है, पर वो आके सुनाता था। अब मुझे होता था कि इसको बंद करूं, बंद करूं। अब मैं नया नया था आबू में, मैंने कहा इसको करूं तो कैसे करूं। पर जब 2-4 बार हुआ फिर मैंने कहा नहीं, ये तो फिर मुझे ये सोने के बर्तन में क्या है, कचरा ही भरता रहेगा, ये तो सोने का बर्तन है, यहां तो शेरनी का दूध चाहिए, प्योर ज्ञान चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। उस दूध में एक बूंद भी अगर विष की आ गई तो क्या हो जाएगा, पूरा दूध खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। एक दिन आया मेरे पास, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे पास आया, ललित भाई देखो ना, आपके लिए और मेरे लिए ज्ञान सरोवर का वो भाई है ना, वो ऐसी बात कर रहा था, वो पीस पार्क का भाई ऐसी बात कर रहा था, अभी हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर वो ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगा। मुझे पता लग गया कि ये व्यर्थ चला रहा है और व्यर्थ चलाता रहेगा। मैंने कहा आज मुझे ये ऑपरेशन करना है कि ये सदा के लिए खत्म हो जाए, ये चीज आज ऑपरेशन करना है। मैंने कहा आपके पास वो ज्ञान सरोवर के भाई का नंबर है? तो ना मेरे पास नंबर नहीं। उस समय मोबाइल मतलब वो नहीं होते थे, लैंडलाइन होता था। तो मैंने कहा नंबर है? तो नहीं है। तो मतलब उस भाई के पास नहीं था मोबाइल। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने एक्सचेंज ज्ञान सरोवर एक्सचेंज में फोन किया, फोन करके उनको कहा कि मुझे फलाने भाई से बात करनी है, आप जरा बात कराओ। मेरा मोबाइल था, मैंने स्पीकर फोन पर रखा उसको मोबाइल को, वो भाई साथ में बैठा था, उन्होंने ज्वाइंट कराया वो भाई से ज्ञान सरोवर में। मैंने कहा देखो फलाना भाई मेरे साथ बैठा है और हम दोनों स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं, इनको किसी ने कहा है कि आप हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो क्या ये सही बात है? तो उसका क्या जवाब होगा? नहीं नहीं, हमने तो कभी ऐसी बात की नहीं, हम तो आपका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी बात, हमने तो कभी नहीं की। मैंने कहा हाँ मुझे विश्वास है कि आपने ऐसी बात नहीं की होगी, पर अब इनको किसी ने सुनाया तो ये आके मेरे को सुना रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपसे ही वेरीफाई कर लूं सीधा, ताकि बात यही पूरी हो जावे। ऐसे करके वो बात पूरी हुई। अब वो जो भाई मेरे बाजू में बैठा था, ऐसे थोड़ी कोई सच बोलेगा, ऐसे थोड़ी कोई कहेगा। मैंने कहा नहीं देखो एक बार हम पीस पार्क वाले से भी वेरीफाई कर लेते। तो सेम स्टोरी पीस पार्क वाले के साथ भी हुई, ऐसे ही उससे भी बात की, वो भी यही बोला कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब ये भाई ऊंचा नीचे हो बैठा बैठा, नहीं 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 ऐसे थोड़ी कोई वेरीफाई कराना होता, ऐसी कोई बात थोड़ी होती, ऐसे थोड़ी वो हाँ कहेंगे कि मैंने ऐसी बात। मैंने कहा देखो कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है उसको आप सच मान रहे हो और आके मुझे बता रहे हो, इससे अच्छा है कि जो व्यक्ति ओरिजिनली जिसने कहा हम उसी से पूछ लेवे ना, उसने कहा तो कहा, नहीं कहा तो नहीं कहा, बात तो यहां पूरी हो जाएगी। ऐसे करके वो एपिसोड उस दिन ऑपरेशन हुआ। आज वो उस बात को 17 साल हो गए, 18 साल वो भाई और आज हम मिलते हैं, ओम शांति के अलावा कुछ नहीं होता है, या कुछ कारोबार होता है तो वो कारोबार की बात सुनाते हैं, या कार सेवा की कोई बात होती है तो कुछ एक्सचेंज, बाकी कुछ भी नहीं। थोड़ा उस समय उसको बुरा लगा, लेकिन सदा के लिए मैं व्यर्थ से बच गया, वो भी व्यर्थ से बच गया। और उसने और 10-15 लोगों को बोल दिया कि भाई ललित भाई से जरा बात करो तो ध्यान से करना, हो वो सामने सामने ही फोन लगा के वेरीफाई कर लेंगे। तो और मैं बच गया। तो ये हमको बनना ही पड़ता है, कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है, धर्मराज बनना पड़ता है। अगर हम वकील बन गए ना तो आप देखना लाइन लग जाएगी व्यर्थ की। तो अगर हम व्यर्थ से बचे रहे तो हमारी मनसा पावरफुल होगी, और पावरफुल मनसा के द्वारा हम सारे विश्व में पावरफुल वाइब्रेशन दे सकेंगे। बस एक और अभ्यास जो डेली इसके लिए करना होगा मनसा से सकास के लिए, वो आत्मा देखने का अभ्यास, आत्मा अनुभव करने का अभ्यास। क्योंकि इस शरीर का इसमें महत्व नहीं है, हम शरीर बीमार भी है, शरीर कारोबार में एंगेज्ड भी है। अब कोई सारा दिन तो हम नहीं बैठे रहेंगे ना कि भाई सारा दिन हम शांति से बैठ गए, तो मनसा सकास तो सारा दिन देना है, केवल अमृत वेला देना है, केवल नुमाशान देना है, ऐसा नहीं है। हमको सारा दिन मनसा सकास देना है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे मन से क्या निकले, पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही निकले, एक आदत पड़ जाए। एसी चालू करते हैं तो ठंडी हवा ही आती है ना, एसी यहां पर आदत पड़ जाए कि सदा शुभ भावना शुभ कामना के ही संकल्प निकले, और इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। 2010 में यज्ञ में एक प्रोजेक्ट चला था, बिलियन मिनट ऑफ गुड विशेष बैंक, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया था उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। पर तब से मेरा खास अटेंशन गया, तो अभी हर व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए, घटना के लिए शुभ भावना शुभ भावना शुभ भावना शुभ भावना निकलता, इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। मोबाइल हाथ में है तो ये अच्छा चले, इसकी बैटरी लंबी चले, ये ठीक रहे। किसी अभी अगर मेरे पास फोन आता है तो मैं तुरंत फोन उठा नहीं लेता हूं, फोन देख के उसको 3 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड पहले गुड विशेष देता हूं, तो ये तेरा काम हो जाए, तुम खुश हो जाओ, तुम आनंद में रहो, वो करने के बाद फिर फोन उठाता हूं। धरनी तैयार हो जाती है पॉजिटिविटी की। तो ये एक आदत पड़ जाए, इसलिए फिर मनसा सकास स्पेसिफिक टाइम पर ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में, हर जगह, हर रूप में हम दे सकते हैं, लिमिट में नहीं बांधना है। पर मन की अवस्था ही ऐसी हो जाए जो सदा पॉजिटिव 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 ही निकलता रहे, नहीं तो क्या होगा, सारा दिन हम ऐसे ही रहेंगे, चलो अमृत वेला बैठेंगे तभी हम मनसा सकास देंगे, या नुमा शाम को बैठेंगे तभी मनसा सकास देंगे, या अगर किसी को मनसा सकास देनी है तो सब काम छोड़ो और बैठ जाओ एक बार, फिर मनसा सकास देंगे। हमारा तो जीवन ही योगी जीवन है, और जब जीवन ही योगी जीवन है तो हर समय वही चीज निकलती रहे, हर समय। वो भक्ति में बताने हनुमान का छाती चीरा तो क्या निकला, राम। तो यहां भी मन में कभी भी कुछ भी हो, उसका भला हो, उसका कल्याण, वो खुश रहे, वो आगे बढ़े, वो आनंद में रहे, उसके काम हो जावे, वो निरोगी रहे, सदा पॉजिटिव निकलता रहे। फिर जब ये अभ्यास होगा ना, तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब बस वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही निकल रहा है, और वो फील करेंगे। हम बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, 45 डिग्री से पसीना से हम मार्केट से आ रहे हैं, और हम अपने रूम में गए और एकदम ठंडी हवा का महसूस हुआ, एकदम ठंडी हवा महसूस हुई, तो हमको क्या लगेगा, एसी चालू है। तभी एकदम इतनी गर्मी में से आए तो ठंडी हवा महसूस हुई। एसी बोलेगा नहीं कि मैं चालू हूं, बोलेगा एसी कि मैं चालू हूं, वो नहीं बोलेगा, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा एसी चालू है, कैसे पता लगेगा, उस ठंडी हवा जो महसूस होगी उससे पता लगेगा एसी चालू है। तो ऐसे ही कोई भी हमारे पास आएगा ना, रोता हुआ, दुखी, परेशान, आते ही हमारी दृष्टि दो मीठे शब्द देखते ही ठंडा, एकदम आराम हो जाएगा उसको। ये मनसा सकास है। कोई दूर भी होगा, हमारी कहीं बात चल रही होगी, कहीं पर भी कोई दो लोग हमारी बात कर रहे होंगे, तो भी उनको खुशी की अनुभूति होगी, प्रेम की अनुभूति होगी। मैं ज्ञान में आया उसके पहले भक्ति करता था बहुत, तो एक ही संकल्प था फिर मन में उस समय कि कोई भी मुझे याद करे तो उसे भगवान याद आवे। ये एक संकल्प मैंने मन में रखा था कि कोई भी मुझे याद करे किसी भी कारण से तो उसे कौन याद आवे, भगवान याद आवे उसको। मैंने कहा ऐसा कुछ करना है मुझे जीवन में, फिर तो बाबा मिल गया और रास्ता भी मिल गया कि कैसे भगवान याद आवे, कि हम अपने जीवन को ऐसा बनावे जो जब कोई हमें याद करे तो क्यों तो भगवान याद आवे उसको। तो ये एक निरंतर अवस्था है मनसा से सकास देने की। हाँ, पूरे विश्व को देना है तो हम ऊपर की स्थिति में स्थित रहे, तो सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को हमसे सकाश मिलेगा। और जब हम दूसरों को देंगे तो पहले तो अपने आप में बाबा भर ही देगा, बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा वो सकाश भर ही देगा, और उसके आधार पर हम दूसरों को दे सकेंगे। दिव्य दर्पण याद रखना, सकाश देने का साधन क्या है, दिव्य दर्पण। आत्मा दिव्य दर्पण बन जावे ताकि बाबा की लाइट आवे, दूसरों तक जावे, वो हर एक तक जावे। और पावरफुल करंट देना है, एक एक चीज के लिए नहीं, इतना पावरफुल करंट हो जो उसको जो चाहिए वो उसमें से ले लेवे, हर चीज उसकी जीवन में अच्छी हो जावे हमारी सकास से। तो आप सब भट्टी में आए हैं तो हमें बहुत बहुत हमारी गुड विशेज है कि यहां से इतनी पावर, ये पावर हाउस है, ये स्थान ही पावर हाउस है, बाबा की कर्म भूमि है, तो यहां से इतनी पावर लेके जाएं जो सदा जैसे अगरबत्ती क्या होती है, जलाओ तो सुगंध चारों तरफ फैलती है, फूल खिलता है तो उसकी सुगंध ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलती, कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसे यहां से आत्मा से ज्ञान की, पवित्रता की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सुख की, शक्ति की सुगंध फैलती रहे और अनुभव हो सबको। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वाली बात नहीं, लेकिन अनुभव हो प्रैक्टिकली कि हाँ इनसे मुझे शांति मिल रही है, इनसे मुझे खुशी मिल रही है, वो ठंडी हवा, ऐसी के ठंडी हवा की तरह शांति के अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो, ये सकास है। दादी जानकी कहती थी, कोई आपको देखे तो अशरीरी बन जावे, कोई आपको देखे तो अशरीरी बन जावे। कब बनेगा कोई अशरीरी हमको देखने के बाद? जब हम अशरीरी अवस्था में होंगे, तब हमको देख के सामने वाला अशरीरी बनेगा। वो व्यवस्था, वो ये डिफिकल्ट नहीं है, केवल अभ्यास की जरूरत है, याद रखना और अभ्यास करना। अभ्यास से न तू कौनते ये वैराग्येण चक्रियते, निरंतर अभ्यास और बेहद के वैराग्य से ये स्थिति संभव है। न काम का छोड़ना है, न किनारा करना है, सब करते हुए सकास देना है, केवल मनसा को प्योर बनाना है और उसके लिए रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन अंदर पॉजिटिव डालनी है। ठीक है, ओम शांति।
बहुत ही सरल शब्दों में बातचीत करने के ढंग से ही इतना बड़ा टॉपिक, मनसा सेवा कैसे करें, मनसा से सकास कैसे देवे, बहुत ही सहज करके समझाया। टॉपिक क्लियर हुआ ना सबको? तो बहुत अच्छी तरह से। भाई साहब का एक स्लोगन है, सब सबका भला हो सब सुख पावे। कोई भी मेल में या कोई भी कारोबार में आप कोई भी मैसेज डालेंगे ना, तो नीचे ये लिखा हुआ आएगा, सबका भला हो सब सुख पावे। तो ये जैसे आपने अपने लाइफ का पैटर्न बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।